समारा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य लला। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनन दिव्य लला। महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण पवन ये खिला चमन ये दिन, और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ हो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रतना कर पास में आकर वो रतना कर रतन अनोखे लुटा रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ प्रभु शरण
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति हुई। हम फिर एक बार आज श्रेया बेन को वेलकम करते हैं। हम फॉर्चुनेट है कि हमें दोबारा श्रेया बेन से सुनने का मौका मिला है और टॉपिक भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, कर्म फिलॉसफी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये तो हमने सुना है। बिना कर्म के सपने देखना मृग तृष्णा समान होते हैं और अच्छे कर्मों में डटे रहने से चमत्कार भी सच होते हैं। तो अब हम सुनेंगे श्रेया बेन से।
ओम शांति, ओम शांति। सभी हल्के, मन भारी है कि हल्का है? छोड़ दिया कल सारा यहां पर? किस किस ने छोड़ा? तो कल मुझे कोई कह रहा था छोड़ तो देते हैं, दिल से छोड़ देते हैं, फिर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। किस किस का वापस आ जाता है? वो हाथ खड़ा करना। पुरानी बातें आ जाती हैं। देखो क्या होता है, जैसे जब चोट लगती है, बच्चे को चोट लगती है ना, जख्म होता है, घाव होता है, तो उसका हाथ बार बार कहाँ जाता है? चोट पर जाता है कि नहीं जाता? लेकिन जो बड़े समझदार होते हैं घर में, वो उसको बार बार क्या कहते हैं? हाथ नहीं लगाना। कहते हैं ऐसा कि हाथ नहीं लगाना। अगर उसको बार बार हाथ लगाएंगे तो वो जख्म क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। ऐसे ही पुरानी बातें यहां से डिलीट नहीं हो सकती हैं। अगर आप बार बार उसका चिंतन करेंगे तो वो ऐसा है जैसे बार बार उसको हाथ लगाना, लेकिन अगर उसका चिंतन करना बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीवन की लंबी यात्रा है, उसमें कई बार बातें ऐसी इतनी बड़ी होती हैं कि हमारा ही मन कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहता है आपका मन कभी कभी ना, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का जवान बच्चा मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, धन का बहुत लॉस हो जाता है, लोग भी आकर के हमको कहते हैं कि भगवान ने आपके साथ क्या कहते हैं, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो इतने सज्जन पुरुष हैं, आपने तो आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, भगवान ने पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों किया। फिर हमारा मन भी यही गीत गाना शुरू कर देता है, मैं तो इतना भगवान को याद करता हूँ, इतना मंदिर जाता था, इतना दान पुण्य करता था, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी भी जीवन में ऐसा संकल्प आपको आता है? आता है ऐसा संकल्प? किस किस को ऐसा संकल्प आता है? हाँ, अब दीदी ने जब टॉपिक अनाउंस किया, कहा कर्म फिलॉसफी। हम भारत में रहते हैं, भारत में कर्म फिलॉसफी में एक लाइन तो हम सबको पता ही होती है, कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। तो वो एक लाइन कौन सी है कर्म फिलॉसफी की? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इतना तो हमें पता ही है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बीज बोएंगे एज यू सो सो शैल यू रीप, ये हम सुनते हैं। अब ये दो बातें हो गई, एक हमने सुना जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, और दूसरा हमने सुना कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है। जब भी कोई बात आई तो हमने कहा किसने किया हमारे साथ ऐसा, उसने किया। अब ये दो बातें हो गई ना, एक है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है कर्म सिद्धांत के अनुसार, शायद कोई बीज बोया था उसका ये फल है। दूसरी बात है, हमने शुरू से सुना है जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है, वो चाहे तो अच्छा होता है, वो चाहे तो बुरा होता है। दो बातें हो गई ना, अब ये दोनों कैसे हो सकती हैं? एक है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, एक है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। दोनों में से आपको सही कौन सा लगता है? वो कर रहा है कि मेरे कर्मों का फल है? आज का सुबह का सत्र आपने सुना था परमात्मा का? नहीं भी सुना हो तो किसी भी जगह पर अगर हम परमात्मा के बारे में सुनते हैं, कोई भी शास्त्र है, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी आप कहीं पर भी, तो परमात्मा को कैसा दिखाया है? वो किसका सागर है? किसका सागर है वो? प्यार का सागर, दया का सागर, रहम का सागर, शक्तियों का भंडार, ऐसी तो दिखाया है ना। आपको लगता है वो प्यार का सागर मेरे साथ ऐसा कर रहा होगा? कौन है वो मेरा, आप बताओ? मैं आत्मा हूं तो वो मेरा कौन है? अक्षर परमात्मा कहां से आया? मैं आत्मा, वो परमात्मा, तो वो मेरा कौन हुआ? वो मेरा कौन हुआ? पिता, मात पिता। कहते तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। माता पिता बंधु सखा, वो मेरा जो मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप मात पिता बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं यहाँ पे? आप मात पिता अपने बच्चे के जीवन में दुख लेकर आएंगे कि सुख लेकर आएंगे, क्या करेंगे? सारा जीवन मात पिता यही मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई दुख नहीं आए। मन्नतें मांगेंगे कि भगवान इसका दुख भी क्या करो, इसका दुख भी मुझे दे दो, पर ये मेरा बच्चा कैसा रहना चाहिए? सुखी। अपने जीवन में कितना भी दुख झेला होगा, कितना भी सहन किया होगा, लेकिन बस अंदर में एक आश रहेगी कि इसके जीवन की जो यात्रा है वो कैसी हो? सुखद हो, इसको कोई बीमारी नहीं हो, इसको सब होता है कि नहीं? अंदर माता पिता है, माता पिता तो अपने बच्चों के लिए, आज आप माता पिता बैठे हैं परफेक्ट नहीं है, तो भी अंदर में यही संकल्प चलता है कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई दुख नहीं हो, तो वो तो परम पिता है। परम माना हाईएस्ट, श्रेष्ठ। वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहेगा, आप बताओ? अच्छा चाहेगा कि बुरा चाहेगा? बताओ, सोच करके बताओ, अच्छा चाहेगा कि बुरा चाहेगा? अच्छा चाहेगा। तो फिर हमारे जीवन में अगर जब बुरा कुछ होता है, और होता है, दिखाई देता है, तो ये वो कर रहा है? क्योंकि कई बार जब इतना बड़ा विघ्न कभी कभी आता है ना, तो जिस समय हमें उसके सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, हम उससे नाराज हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हम कहते हैं अभी हम दोबारा कभी मंदिर नहीं जाएंगे, उसको याद नहीं करेंगे, उसने समय पर मुझे सहयोग नहीं दिया। भगवान है तो कहाँ है, वो आया क्यों नहीं मुझे उस समय मदद करने? तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान सर्वशक्तिवान तो है, पर मुझे लगता है जब भी कोई विघ्न आए वो उसको ठीक कर दे, और अगर वो उसको ठीक कर दे, मरे को जिंदा कर दे, सब कुछ कर दे, तो मैं मानूं वो है। ऐसा है कि नहीं? तो पहली बात, क्या वो करता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज की बहुत क्लैरिटी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है कि उसकी मर्जी है, आप डिसाइड करो आज। किस किस को लगता है उसकी मर्जी, वो हाथ खड़ा करें। किस किस को लगता है मेरे कर्म का फल है, वो हाथ खड़ा करें। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, जब ये भी क्लियर हो जाता है कि ये मेरे कर्म का फल है, फिर दूसरा प्रश्न मन में आता है कि अच्छा अगर ये मेरे कर्म का फल है तो हम अपना जीवन देखना शुरू कर देते हैं पीछे, रिवर्स में। और फिर हम रिवर्स में देखते हैं तो हम कहते हैं मैंने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने तो किसी का ऐसा नुकसान नहीं किया जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। चलता है ये संकल्प कि नहीं? ठीक है मेरे कर्म का फल है, मैं कैसे मानूं? मैं अगर अपने जीवन देखता हूं तो मैंने तो बड़े अच्छे से जीवन जी और दान पुण्य भी किया और सबका भला भी किया, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। आता है ये संकल्प? आता है ना? क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो कर्म है वो कौन करता है? हम अपनी जो यात्रा है वो कहां से देखते हैं? डेथ, बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक देखते हैं, और हमें इसमें लगता है हमने तो कुछ गलत किया नहीं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? लेकिन जो कर्म कर रहा है वो ये शरीर नहीं है। अच्छा, मानो आज एक बच्चा है, वो बच्चा बहुत बारिश में खेल रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, ध्यान नहीं रख रहा है। तो कभी कभी आपने कहा है इतनी आइसक्रीम खा रहे हो, इतना बारिश में खेल रहे हो, देखना ऐसे करते रहोगे ना तो कल तुम बीमार पड़ जाओगे। कभी बोला है आपने ऐसा कि अभी ऐसा कर रहे हो, हो सकता है कल तुम बीमार पड़ जाओ? और फिर कभी कभी वो कल बीमार पड़ जाता है, और वो जैसे ही कल बीमार पड़ता है आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? मुझे पता था। आपको आश्चर्य लगता है उस चीज को? आपको देखकर आश्चर्य नहीं लगता? आप तो और ही क्या कहते हैं, मुझे तो पता था, ये तो होना ही था। क्योंकि आपने आज कर्म देखा, कल आपने फल देखा, आपको कोई भी उसमें संकल्प नहीं चलता, आप कहते तो होना ही था। फिर कभी कभी जीवन में हम ये भी देखते हैं, घर में कोई फैमिली मेंबर है, बहुत ड्रिंक करता है, करता रहता है, हम उसको कहते हैं मत पियो, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मत पियो। हम भी कहते हैं, परिवार वाले भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, वो नहीं मानता। लेकिन फिर 30-40 साल के बाद कुछ बीमारी हो जाती है, लिवर खराब हो गया, कोई किडनी खराब हो गई, कुछ बीमारी हो जाती है, आपको आश्चर्य लगता है? लगता है आपको? आप क्या कहते हैं? ये तो होना ही था, हम सबको पता था, ये तो कोई दिन बीत रहा था, डॉक्टर ने तो कह ही दिया था, हमें पता ही था। मना 30-40 साल के बाद भी जब आपने फल देखा तो आपको कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि वो एक जीवन काल में हो गया ना, तो आपको देख करके कोई आश्चर्य नहीं लगा, आपने कहा ये तो होना ही था। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता कि वो ऐसे करते 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 शरीर छोड़ देता, कुछ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होता, कुछ नहीं होता, शराब भी पीता, गलत कर्म भी करता, बहुत आराम से शरीर छोड़ देता। अब किसी घर में छोटे से बच्चे का जन्म होता, और जन्म से ही आपको ऐसे बच्चे मिलते होंगे कभी कभी, जन्म से ही कोई देख नहीं सकता, जन्म से ही किसी के हार्ट में छेद है, जन्म से ही किसी को कोई ना कोई बीमारी है, तब हम क्या कहते हैं? हमें उसको देख करके क्या आता है? आता है ना, रहम आता है, हमें उसको देख करके बहुत रहम आता है, और हम कहते हैं इतना छोटा बच्चा, इतने छोटे बच्चे ने क्या गलती करी जो भगवान ने इसको इतनी बड़ी सजा दी। तो अब वो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो छोटा बच्चा केवल शरीर छोटा है, कॉस्ट्यूम छोटा है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो आत्मा विनाशी नहीं है, वो अविनाशी है। और वो आत्मा जब एक कॉस्ट्यूम छोड़ करके दूसरा लेती है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, तो सिर्फ अपने साथ क्या लेकर के जाती है, क्या लेकर के जाती है सिर्फ अपने साथ, आप बताओ। आत्मा अपने साथ क्या लेकर के जा सकती है, दो चीजें, एक तो जो हमारे संस्कार हैं और दूसरा हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब है। और इसीलिए आप देखें जन्म होते ही पंडित जी उसकी जन्म पत्री बना देते हैं, छोटे बच्चे की बना देते हैं कि नहीं बना देते जन्म, अभी जन्म होते ही कैसे बन सकते हैं, उसमें उसका भाग्य भी लिख देते हैं, इस समय पर ये होगा, इस समय पर ये होगा, नूंदा हुआ है, कैसे बन गया, अभी तो वो बच्चा है, जन्म हुआ, उसने अभी कोई कर्म ही नहीं किया, लेकिन भाग्य उसका पहले से लिख दिया, तो वो भाग्य किस अनुसार लिखा गया, वो भाग्य किस अनुसार लिखा गया, वो जो पिछला हिसाब किताब था उस अनुसार वो आत्मा अपना सारा कैरी फॉरवर्ड लेकर के गई। अब वो कैरी फॉरवर्ड हमें दिखाई नहीं देता, और इसीलिए जब दिखाई नहीं देता तो जब भी कोई सीन हमारे सामने आती है तो मेरा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब आप देखो जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं, कर्म कर रहे हैं, चाहे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो एनर्जी यहां से वहां जा रही है, तो हम कर लेते हैं, हम कहते हैं कल किसने देखा है, आज आज का देखते हैं ना, हम कई बार आज का सोचते हैं, सब जो कर रहे हैं, मेजोरिटी जो कर रही है, हम ऐसे समय पर आ गए हैं जहां सब कुछ जो वास्तव में राइट नहीं है वो राइट हो गया, वास्तव में वो चीजें राइट हैं, जैसे तनाव है, अब तनाव कोई अच्छी चीज है, स्ट्रेस, लेकिन हम उसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकते तो लोग कह देते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। अब उसके पीछे एक अक्षर पॉजिटिव लगाने से तो वो पॉजिटिव होता नहीं, स्ट्रेस है, मन अंदर में दुख है, डिस्कम्फर्ट है, ऐसी एंगर है, तो लोग कह देते हैं राइटियस एंगर, जायज एंगर। अब एंगर है, अग्नि है, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपका कर्म है, पर उसके पीछे कह दिया राइटियस एंगर। कॉम्पिटिशन के पीछे हेल्दी कॉम्पिटिशन, गॉसिप के पीछे हार्मलेस गॉसिप, और एक और अभी नया निकला है टेररिज्म के पीछे कहते गुड टेररिज्म, तो उन्होंने टेररिज्म को भी क्या बना दिया। अभी कहने से हमने जो चीजें जो हर जगह हर धर्म ने हर शास्त्र ने कहा इसका ध्यान देना, पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्योंकि विकार है तो विकर्म है, विकार ही नहीं है तो विकर्म कैसे होंगे, विकार है तो विकर्म है, और विकर्म है तो वो विकर्मों का खाता आगे जाता है। पर हमने आज पांचों को राइट कर दिया, हमने कहा क्रोध भी जरूरी है, थोड़ा बहुत लोभ तो हो ही, हम लोभ नहीं बोलते, हम कहते करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, हम चाहते तो नहीं है, तो हम अपने कर्म को क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, और जस्टिफाई करते करते हमने हर चीज जो रॉन्ग थी आज उसको राइट कर दिया। तो करते समय नहीं सोचा, लेकिन जब लौट करके आया तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा कहता है जब लौट करके आ रहा है ना तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, अब तो ये वो समय है जब फसल काट रहे हो आप, फसल काटने के समय थोड़ी ना सोचा जाता है, किस समय सोचा जाता है, किस समय सोचा जाता है, बीज बोने के समय, बीज अगर सही होगा तो फसल सही होगी, लेकिन बीज ही ठीक नहीं था तो वो किसी ना किसी रूप में तो लौट करके आना था, तो लौट करके आते समय ये कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी जगह जिस समय कर रहे हैं उस समय अपने से पूछना होता है, भले सारी दुनिया भी कर रही है पर ये राइट है कि रॉन्ग है। कैसे पता चलता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे समझ में आए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पता कैसे करें, हाँ जी, कॉन्शियस, कॉन्शियंस भी थोड़ा समय तक तो बताती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़े समय तक दबाते रहे ना तो उसके बाद वो भी बताना छोड़ देती है। कॉन्शियस माना अंदर पता तो हमें सब कुछ है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है पता है, पाप क्या है पुण्य क्या है पता है, जिसको हम कहते हैं मेरी अंतरात्मा ने बोला, मेरी इंट्यूशन ने बोला, पर वो भी तब एक्टिव होती है जब आपकी बुद्धि के अंदर विजडम है। अगर हम उसको कुछ भोजन ही नहीं देते तो धीरे धीरे वो भी बैठ जाती है, फिर आपको लगता है नहीं जो सब कर रहे हैं शायद वही राइट होगा, मेजोरिटी जो कर रही है वही राइट होगा। हो जाता है ऐसे कि नहीं हो जाता? एक लाइन याद रखना, परमात्मा की बहुत सुंदर लाइन है, सच तो बिठो नच। माना जो सच्चा है, जो राइट करता है, वो अंदर में नाचता रहता है। देयर इज ऑलवेज पीस आफ्टर डूइंग राइट। बाहर आपको अप्रिसिएशन मिले न मिले, थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन अंदर में आपको बहुत शांति होगी। पर उसके लिए पहले तो सत्य को जानना, फिर सत्य पर चलना, इसमें बहुत शक्ति लगती है। और वहीं पर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये बात एक जो समझने की कि देखो ये जो लॉ है ना कर्म का, कि जो हम भेजेंगे वो लौट करके आएगा, कहते हम कैसे इस पर विश्वास करें। अभी ग्रेविटी का लॉ है, किसने बनाया? ग्रेविटी का लॉ होता है ना, आप कुछ भी ऊपर फेंको वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वो लॉ किसने बनाया? न्यूटन ने। न्यूटन ने बनाया नहीं है, न्यूटन ने लॉ बनाया नहीं, उसने क्या किया था? डिस्कवर किया। दोनों में बहुत फर्क है, एक है आपने लॉ बनाया, एक है आपने डिस्कवर किया। लॉ एग्जिस्ट करता था, लेकिन जैसे उसको डिस्कवर किया अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब उसमें लॉ क्या है, कोई भी चीज ऊपर जाएंगी, समय अलग अलग हो सकता है, कभी कभी वो चीज को नीचे आने में टाइम लग जाता है। वो देखा आपने कल यहां हीलियम के बलून उड़ रहे थे, वो गैस वाले, वो ऊपर उड़े जा रहे, एक घंटे तक ऊपर उड़ रहे थे, पर वो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? आना तो है उसने नीचे, समय लग सकता है पर उसने नीचे तो आना ही है। ये ग्रेविटी का लॉ है, जो ऊपर फेंका उसको नीचे आना ही है। कर्म का लॉ क्या है? कर्म का लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समय अलग हो सकता है पर जो आपने भेजा है उसने आज नहीं तो कल लौट करके आना ही है। अच्छा भी बुरा भी, इसमें कोई सिर्फ बुरे की नहीं है, वो अलग बात है। जीवन में देखो क्या होता है, जैसे शरीर भी है, हर रोज हेल्दी होता है तो कभी संकल्प थोड़ी ना चलता है ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी है। लेकिन किसी दिन सर में भी दर्द हो, थोड़ा सा भी हो, तो दिन में 10-12-50 बार संकल्प चलता है कि नहीं सर में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द है। हम 2-4 को बताते भी है मेरे सर में बहुत दर्द है, तो हमारा अटेंशन वहां जाता है जहां दर्द होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो वहां अटेंशन नहीं जाता, लेकिन कहीं दर्द है ना वहां ध्यान जाता है। ऐसे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी है लेकिन वहां ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान कहां जाता है? ध्यान कहां जाता है? जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। आप सच्चाई से बताओ, अपने जीवन को देख लो, एक मिनट के लिए देखो, और 100% में से आज परसेंटेज डिसाइड करो, ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा बुरा है। करो, डिसाइड करो। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो धन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आज आप यहां बैठे हैं, देखते जाए अपने जीवन को पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, और आज आप डिसाइड करें कि 100% में से अगर आपको परसेंटेज देनी हो, ज्यादा अच्छा कि ज्यादा बुरा। किस किस को लगता है ज्यादा अच्छा? देख लो, एक दूसरे के हाथ देखो, चलो चारों तरफ। लेकिन हमारा अटेंशन कहां पर होता है? वो एक चीज जो ठीक नहीं है। और 100% में से भी मैं समझती हूँ 80-85% अच्छा ही होगा ना। देखो, आज आप कभी जाओ हॉस्पिटल में जहां पर लोग देख नहीं सकते, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ये है, आपको एकदम लगेगा परमात्मा ने इतना स्वस्थ शरीर दिया है, और अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? शुक्रिया। पहले के समय पर हम सुबह से लेकर रात तक उसका क्या करते थे? शुक्रिया। उठे तो शुक्रिया, तन का शुक्रिया। स्कूल में वो बच्चे होते थे, टिफिन बॉक्स खोलते थे तो भी प्रेयर होती थी, Thank you God for this food. Thank you God for this body. Thank you God for this family. सोते समय भी थैंक यू. तो सारा समय मन एक बड़ी ऊंची ऊर्जा में रहता था. थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया. अब शुक्रिया करने वाले की स्थिति इतनी ऊंची होती है कि कुछ छोटा मोटा आ भी जाता है तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता. अब शुक्रिया की स्थिति नहीं है कभी कभी. अब कभी कभी स्थिति कौन सी है शुक्रिया की जगह बताओ. जब पहुंचे मंदिर में भगवान जी के सामने क्या शुरू हो जाती है? हाँ जी, डिमांड है. परमात्मा हमें कहते हैं याद कम करते हैं, फरियाद ज्यादा करते हैं. और फरियाद भी क्या करते हैं, अर्जी डालते हैं, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो. अब देखो वो क्या करता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि हमने कहा हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे कर्म का फल है, तो फिर उसको याद करने की क्या जरूरत है. पहली चीज, जो कर्म का हिसाब किताब है वो लौट करके तो अच्छे में भी आता है, अच्छा तो आपको पता ही है. जो बुरा है उसमें ज्यादातर चार रूप से आता है, जो दुख है उसमें. पहला है धन, दूसरा जन, तीसरा तन, चौथा मन. आप इस चीज को भी मान के चलना, सबसे इजी पेपर धन का है. हमें लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब धन का पेपर आता है ना कभी कभी, आजकल किसी की नौकरी छूट जाती है, नौकरी छूटी, माना आपके पास अभी इस महीने इस साल धन की तंगी है, तो होना तो सिर्फ क्या चाहिए था, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं शायद आप उतना लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. पर ज्यादा तकलीफ इसलिए आती है क्योंकि कई बार हमारा जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं होता. एक समय ऐसा होता था, इतना पक्का कराते थे बड़े बुजुर्ग कि उतने ही पैर फैलाना जितनी आपकी चादर है. किस किस ने ये सुना हुआ है? देखो सब. और फिर दूसरा ये पक्का कराते थे कि पहले तो उतना ही करना और ज्यादा से ज्यादा धन को क्या करना, सेविंग्स जोड़ करके रखना. था कि नहीं था? आज का जीवन क्या हो रहा है, EMI, और EMI भी किसके लिए, फोन के लिए. आज हर चीज, पढ़ाई लोन पर, घर लोन पर, फोन, गाड़ी, हर चीज हम किस पर ले रहे हैं. तो जब कोई हमारी नौकरी जाती है किसी भी कारण से, तो सेविंग्स तो छोड़ो, एकदम उस चीज का प्रेशर पड़ता है. क्योंकि कोई मॉर्गेज है, कोई लोन है, कोई EMI, बहुत कुछ है, तो वो आपको प्रेशर तो पड़ेगा ना. पर वो प्रेशर क्यों पड़ा है, क्योंकि पहले से वो जो जीवन जीने का तरीका था वो ठीक नहीं था. धन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है जीवन के लिए. क्योंकि शरीर निर्वाह अर्थ किससे होता है, धन से. आपको कोई भी शरीर की जरूरत है तो वो ज्ञान से तो पूरी नहीं होगी, वो तो धन से पूरी होगी. लेकिन एक भ्रांति बैठ गई, इल्यूजन जिसको कहेंगे, हमें लगा जितना जीवन में धन आता जाएगा उतना क्या आती जाएंगे, क्या आती जाएंगे, खुशी. और ये बहुत छोटी इससे शुरू हो जाता है 10, 12, 15 साल से, कि धन आता जाएगा तो खुशी आती जाएंगे. आप सब अनुभवी बैठे जीवन में, धीरे 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 आपका धन बड़ा होगा, है ना, कभी ना कभी. अब जब वो धन बढ़ता है, एक छोटा बच्चा आप देखो जो 5 साल का होता है, एक 50-60 ईयर्स ओल्ड देखो जिसके पास थोड़ी संपत्ति होती है, दोनों में से आपको ज्यादा खुश कौन दिखाई देता है, कौन खुश दिखाई देता है ज्यादा, बच्चा दिखाई देता है ना. जिसके पास ना धन है, ना संपत्ति है, ना बैंक बैलेंस है, ना नाम है, ना मान है, ना शाम है, ना डिग्री है, अभी तक उसने जीवन में कुछ भी अक्वायर नहीं किया है, तो भी वो आपको खुश दिखाई देता है. और फिर हम एक जीवन की यात्रा शुरू करते हैं अक्वायर करने की, करते जाते करते जाते करते जाते हमें लगता है जब सब कुछ हम अक्वायर कर लेंगे तो हम कैसे होंगे, खुश होंगे. और फिर हमें लगता है सब कुछ तो आ गया, सब कुछ जो मुझे चाहिए था मेरी लिस्ट में सब कुछ तो आ गया, लेकिन फिर भी क्या नहीं आई, कंटेंटमेंट कहो, सैटिस्फैक्शन कहो, जिसको कहते हैं ना, बड़े से बड़ा धन कौन सा है, संतोष, संतुष्टता, बड़े से बड़ा धन इसको माना गया है. धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन आपको जो चीज देता है, जैसे आज आपके पास धन नहीं था, मान लो उदाहरण के तौर पर आप साइकिल पर चलते थे, फिर धन बढ़ने लगा आप स्कूटर पर चलने लगे, फिर और धन आ गया आप गाड़ी में चलने लगे, और आ गया आपने अपना प्राइवेट प्लेन खरीद लिया, है ना, ऐसे लोग भी उनके पास प्राइवेट प्लेन है। तो धन आता क्या, आप साधन खरीदते गए तो आपका क्या बढ़ता चला गया, क्या बढ़ता चला गया, पहले आप साइकिल पर जाते थे, फिर आप स्कूटर पर जाते थे, फिर आप गाड़ी पर जाने लगे, फिर आप उससे अच्छी गाड़ी पर जाने लगे, फिर आप प्लेन पर जाने लगे, आपका अपना है, क्या बढ़ रहा है, आप ट्रैवल करते थे पहले, अब वो स्टेटस बढ़ गया। ये जो साधन था ये किस लिए बना हुआ था, साधन का पर्पस क्या था, क्या होता है साधन का पर्पस, एक साइकिल से जा रहा है एक गाड़ी से जा रहा है, दोनों में से इजी कंफर्टेबल कौन ज्यादा, गाड़ी वाला नेचुरली ना कंफर्टेबल ज्यादा, दोनों में से खुश कौन, साइकिल वाला, तो फिर गाड़ी की इच्छा क्यों रखी, सोचो सोचो सोचो, साइकिल और गाड़ी में कंफर्टेबल कौन, गाड़ी वाला, साइकिल और गाड़ी में से ज्यादा खुश कौन, पता ही नहीं ना हमें, हाँ जी नहीं बता सकते, एब्सोल्युटली नहीं बता सकते, क्योंकि खुशी मन की स्थिति है। आप गाड़ी में बैठ करके भी अगर ये सोच रहे हैं, ये पता नहीं सड़कें किसने बनाई हैं, इनको ड्राइवर का लाइसेंस किसने दिया है, गवर्नमेंट करती क्या है, इतने तो खड्डे हैं, पता नहीं मेरा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, चिंता 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 व्यर्थ, तो आप उसके अंदर बैठ करके भी कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं इरिटेटेड, अपसेट, एंग्री। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई मर्सिडीज में बैठा है लेकिन साइकेट्रिस्ट के ऑफिस से वापस आ रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, मना वो तन से तो बहुत कंफर्टेबल है लेकिन मन से ठीक नहीं है। और साइकिल वाला ये भी हो सकता है, साइकिल पर जा रहे मजे से और प्रभु का धन्यवाद कर रहे, देखो आपने मुझे साइकिल दी, अभी मेरे लिए सहज हो गया, अभी मैं जल्दी काम पर पहुंच जाता हूं, मैं और मेहनत करूंगा, मैं साइकिल के बाद स्कूटर लूंगा और सहज हो जाएगा, तो उसकी चिंतन की धारा क्या है, शुक्रिया धन्यवाद, और उधर इतना मिलने के बाद भी अगर व्यर्थ है तो जो खुशी है वो साधनों से कभी नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकती, साधन सुख देने के लिए बने, और अगर हम साधनों से सुख लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आज आप कंफर्टेबली सोफे पर बैठे हैं उसमें कोई नुकसान थोड़ी ना है, शायद अगर यही जमीन पर बैठना पड़ता तो हो सकता था किसको डिस्कम्फर्ट होता, किसको डिस्कम्फर्ट होता, बॉडी को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जमीन पर बैठा है तो वो दुखी है, ऐसा मतलब है इसका, जमीन पर बैठा हो सकता है ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, किसी किसी को ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, फिर किसी को सोफा मिला और कंफर्टेबल है, तो साधन क्या कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, पर हमने क्या किया, साधनों से क्या लेना शुरू कर दिया, क्या लेना शुरू कर दिया, खुशी, क्योंकि हर साधन जब आप खरीदते हैं तो वो आपको टेम्पररी खुशी देता है, आज आप साल भर मेहनत करके जब गाड़ी खरीदते हैं, 10 साल मेहनत करके जब अपना घर बनाते हैं, पूरा पूरा जीवन लग जाता है कई बार तो, बॉम्बे जैसे शहरों में तो इतनी बड़ी बात होती है, तो उसको देख देख करके आपके मन का जो चिंतन है वो बदलता है और आप कहते हैं फाइनली मैंने ये गाड़ी खरीदी, फाइनली मेरा एक अपना घर है, तो थोड़े समय के लिए आपको क्या मिलती है, वो संकल्प से मिल रही है, और फिर जब वो मिलती है लगता ऐसा है कि शायद ये चीज से मिल रही है, चीज कंफर्ट दे रही थी लेकिन चीज ट्रिगर बन रही थी अच्छे संकल्प करने के लिए, तो आपको लगा इस चीज ने मुझे खुशी दी, गाड़ी तो वहीं गैराज में खड़ी होती है, 1 महीने के बाद क्या होता है, फिर बैठो उसके अंदर बैठ करके बोलो खुश हो जाओ खुश हो जाओ, होता है क्या, और ही क्या हो जाता है, इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं, डिजायर्स, परमात्मा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देते, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। क्यों? जब इच्छाएं बहुत बढ़ने लगती हैं, जैसे शरीर को खाना चाहिए ना, चाहिए कि नहीं शरीर को खाना? अगर शरीर को खाना नहीं मिलेगा तो आप वो खाना एक दिन चला लेंगे, दो दिन चला लेंगे, तीन दिन चला लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? एक बार आप मांगेंगे किसी से, मांग करके भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? छीनेंगे, छीनेंगे, छीन करके भी नहीं मिलेगा तो उसके लिए झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत है, उसके बिना चल नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा की खुराक खुशी है, इसलिए कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, वो खुराक है उसकी। अगर आपने वो खुशी आत्मा को नहीं दिया, मतलब मन की स्थिति है, तो मन अगर आपने भगवान से जोड़ करके अगर उसको खुशी नहीं दी, इसको आप समझे, ये बहुत गहरी बात है। आपने अपने मन को उस भगवान से जोड़ करके अगर अपने को संतोष या खुशी नहीं दी तो जीवन में इच्छाएं बढ़ती जाएंगे और वो इच्छाएं हमारे से क्या करा लेती हैं, वो इच्छाएं हमारे से क्या करा लेती हैं, कभी कभी जीवन में गलत काम, पाप करा लेती है। दैट्स वेयर वी बिकम अनएथिकल, नहीं तो हम कभी भी जीवन में अनएथिकल नहीं होंगे। आजकल कभी कभी कई लोग कहते हैं बस मेरा लक्ष्य बहुत धन कमाना, बहुत धन कमाना, बहुत धन कमाना, कि बस सब सुखी रहे। ये जो वृत्ति है ना, ये हमसे कई बार भूल करा लेती है। पहले वृत्ति क्या होती थी कि हमें भले नमक से रोटी खानी पड़े लेकिन चलना धर्म से, गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें गलत नहीं करना, चाहे हमें नमक से रोटी मिले। कहते थे बस भगवान इतना दे देना, मेरा भी पेट भरे और कोई आ जाए तो उसको भी हम खिला सकें, कोई भूखा नहीं जाए, ऐसी वृत्ति होती थी। तो ऐसे जब लोग इस वृत्ति से जीते थे, अब उनको लगता है मुझे बहुत चाहिए क्योंकि सबका पालन पोषण करना है। पर जो बिल्कुल राइट तरीके से चलता है ना, उसके घर में ही ऐसी आत्मा आती है जिसका आपको बहुत पालन पोषण करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपना भाग्य लेकर आती है। और इसलिए कई बार आपका भी अनुभव होगा, कहेंगे ये बच्चा मेरे घर में आया ना, जब से ये आत्मा घर में आई हमारे घर में भरपूरता आने लगे, धन भी आने लगा, सब कुछ आने लगा और हम इसको पढ़ा सके, सब कुछ कर सके। क्योंकि जो आत्मा आएंगी वो अपना साथ में क्या लेकर के आएगी? भाग्य। और कभी कभी हमने अगर थोड़ा सा तरीका हमारा ठीक नहीं था और हमने उससे थोड़ा धन कमाया और वो हमने अपने परिवार की पालना में लगाया, तो कभी कभी उसका सही फल नहीं निकलता है। पिछले दिनों भी किसी ने सुनाया, एक बहन थी, उसने कहा कि ये चीजें हमें तब तो समझ में नहीं आई पर आज समझ में आती है। कि जो उसने बहुत सच्चाई से सुनाया कि मेरे हस्बैंड ने जो कमाया उसमें हमें पता है कि उसकी विधि ठीक नहीं थी, बहुत करके जहां भी होता था, उनकी पोजीशन ऐसी थी और ले लेते थे, अनएथिकल बिहेवियर था, अंडर टेबल, रिश्वत, कुछ ना कुछ। और कहा कि आज हमें महसूस होता है जब हम अपने परिवार में देखते हैं तो उनके दो बेटे हैं थे, मना एक बेटा बहुत ज्यादा, अभी कोई भी पिता धन किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए, बच्चे सुखी हों, बच्चे पढ़ लें, बच्चे सफल हो जाएं। वो कहते वो बच्चा ऐसे रास्ते पे निकला एडिक्शंस के, शराब, सिगरेट और बहुत कुछ, और इतना ज्यादा उसमें फंस गया कि उसका शरीर ही छूट गया, शरीर ही छूट गया उसको। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको निकालने की, बहुत मेहनत करी, पर उसमें फंसते 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 उसके कारण ही उसका शरीर छूट गया। और जो वाइफ थी उसको कैंसर हो गया पर एक बेटा था, तो वो बहुत अंदर में फील करते थे कि हमें ऐसा फील होता है कि क्योंकि शायद वो धन पवित्र नहीं था इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति है। और फिर तो उन्होंने, जैसे भगवान भी कहता है, चलो जो हो गया सो हो गया, बीती सो बिंदी, अब जो धन है उससे हम अगर दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसको अच्छे कार्य में लगाते हैं, तो 100 पुण्य के आगे फिर पाप क्या है, वो तो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन ये अंदर में सोचना कि हम गलत करेंगे और उसका सही रिजल्ट निकलेगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये कभी भी। और ये भारत की संस्कृति में पहले बहुत क्लियर था, लेकिन क्या इसको देखा उसको देखा, हमने कहा इसने गलत किया, इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ उसके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो क्यों अच्छा हो रहा है, वो कौन से कर्म है जिसके कारण अच्छा दिखाई दे रहा है, पीछे के। वो एक कहानी सुनाते हैं, कहा कि एक भक्त था, बहुत भक्ति करता था, बहुत भगवान को याद करता था, गंगा के किनारे रहता था, बहुत भजन करता था। उसका दोस्त था वो बिल्कुल उल्टा करता था, ऐशो आराम मना ऐप भी, एडिक्शंस भी, सब कुछ, मौज के जीवन, गलत भी करना। फिर कई साल ऐसे बीते, फिर वो दोनों ही मिले एक दूसरे को। तो वो दोनों एक दूसरे के तरफ जब आ रहे थे, तो एक जो इधर से आ रहा था उसको ठोकर लगी। तो जब उसका पैर ठोकर खाया, तो एक पोटली थी जो गलत करता था, तो उसने पोटली उठाई तो उसमें अशर्फियां थी। और ये जो भक्त आ रहा था, ये भी इधर से आ रहा था, इसको कांटा चुभा, खजूर का कांटा होता ना, बड़ा बड़ा होता है, उसको वो चुभ गया। अब ये दोनों जब नजदीक आए, तो उसने कहा, देखो तुम इतने साल से भक्ति करते थे, भगवान को याद करते थे, देखो गंगा किनारे रहते थे, तो भी क्या इतना बड़ा कांटा चुभ गया, खून निकल रहा है। और मैं देखो, मैंने सारा जीवन मजे से जिया, गलत किया, तो भी मुझे क्या मिली, ये अशर्फियों की पोटली। ये कुछ नहीं होता, कर्म कर्म कहकर के चला गया। तो जो भक्त आसना थी, उसके मन में व्यर्थ चलने लगा। उसने कहा, कह तो ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने इतना अच्छा किया, देखो तो भी मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो वहां से कोई संत आत्मा गुजर रही थी, तो उसने इस भक्त को देखकर कहा, अरे आपका बहुत खून बह रहा है, लाओ मैं ये कांटा निकाल दूं, आप तो भगवान के भक्त हैं। उसने कहा, नाम नहीं लेना भगवान का, मैं उसको इतना याद करता हूँ, देखो मेरे साथ क्या हुआ, और वो देखो मेरा दोस्त जो गलत जीता है, उसको अशर्फियों की पोटली मिली। तो फिर वो जो संत आत्मा है, वो कहती है, आपको नहीं पता, ये जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला था, लेकिन इसने अपना पाप करते 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 सारा नष्ट कर दिया, और आज एक अशर्फियों की पोटली के साथ इसका पूरा हो गया अकाउंट। और आप जो थे, आपको सूली चढ़नी थी, कुछ ऐसा आपका हिसाब किताब था कि आपको सूली, सूली समझते हैं ना, फांसी पर चढ़ना था, लेकिन आपने इतना भजन किया, इतना भगवान को याद किया, इतना आपने पुण्य किया, तो आज वो सूली किसमें बदल कर पूरा हो गया, कांटा। इसलिए कहते हैं वो सूली से कांटा हो गया, पर वो दिखाई नहीं देता ना। अब सूली से काटा पता कैसे होता है, सूली से काटा भी क्या, कहानियां तो बड़ी वंडरफुल है। सूली पर चढ़ने की सफरिंग कैसी होती है आप बताओ, सूली पर कोई चढ़ा हो, फांसी हो, तो उसके अंदर की सफरिंग कैसी होती है, और कांटे की कितनी होती है, थोड़ी होती है ना। आप कांटे को तो सहन कर सकते हो, सूली तो सहन नहीं होता, वो भगवान की याद से होता है। जब हम उसको बहुत याद करते हैं, तो हमारा मन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि जब वो विघ्न किसी रूप में लौट करके भी आता है, आया कोई विघ्न, हमारी नौकरी चली गई, हमारा कोई नुकसान हो गया, पर हमें वो इतना महसूस नहीं होता, उसकी जो महसूसता है, उसकी जो भोगना है, वो कांटे जितने रह जाते हैं, बस उतना होता है। हमारे पास एक भाई, एक दादी जी थी जिन्होंने सुनाया, लंदन में नया नया ज्ञान में चला था, 3 महीने हुए थे उसको, बड़ा बिजनेसमैन था, और 3 महीने के बाद उसके बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हो गया। तो सबने उसको कहना शुरू कर दिया, आप वहां जाने लगे ना ब्रह्मा कुमारी में, इसीलिए हुआ होगा। तो क्या अलग अलग बातें करते हैं। तो जानकी दादी जी थी उस समय, उन्होंने उसको पूछा, उसने कहा, दादी जी एक तो इतना बड़ा लॉस हुआ है और सब ऐसे बोल रहे हैं। तो दादी जी ने उसको पूछा, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, वो सब सारा ज्ञान की समझ थी। उसने कहा, दादी जी आज तो केवल धन का लॉस हुआ है, अगर मुझे समझ नहीं होती और भगवान का साथ नहीं होता, तो निश्चित रूप से धन के साथ साथ मेरा भी लॉस हो जाता, मैं ये चीज सहन ही नहीं कर पाता। ये तो अब मुझे पता है कि ये उसकी कृपा है। तो जब समझ थी तो सबने कुछ भी बोला, लेकिन पता था। और फिर उसने कहा, दादी जी मैंने ही तो कमाया था, मैंने ही तो कमाया था ना, मैं वापस कमा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। धन में तो सबसे बड़ी बात क्या है, टैलेंट आपके पास है, स्किल आपके पास है, आपने ही तो कमाया था, किसी कारण गया भी आप वापस कमा लेंगे। पर उस समय केवल किस चीज का ध्यान देना होता है कि उसका प्रभाव मन पर पड़ जाता है, नुकसान क्या हो जाता है कि उसका प्रभाव, क्योंकि उसकी याद नहीं होती ना, भगवान की याद नहीं होती, इसलिए कहते हैं मन जीत जगत जीत। जिसने मन के ऊपर जीत पाली उसने सारे जगत के ऊपर जीत पाली। लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए फिर उसके बाद कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका हेल्थ नुकसान हो जाएंगे। इसलिए ये भी आप ध्यान दें और कोशिश करें कि जो धन भी है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पवित्र, उसमें दुआ लगी होनी चाहिए। उसमें कमाना है लेकिन वो ऐसा कमाना है जिसके अंदर अनेकों की दुआ हो। एक समय था जब किसी को कुछ देते थे ना, कोई रिश्वत या ब्राइब, तो उसको डर लगता था, वो कहता था मैं बाल बच्चे वाला हूं, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये पता होता था कि अगर मैंने गलत किया तो उसका सारा जो नुकसान है वो किसको भोगना पड़ेगा, परिवार को भी। मैं बाल बच्चे वाला हूं, मैं नहीं ले सकता। आज अगर किसी को देते हैं 10-20 साल बीत गए, कहते क्या करें मैं बाल बच्चे वाला हूं ना, इसलिए लेना पड़ता है। वो ही लाइन है, वहां उसको डर था कि मैं नहीं ले सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूं। आज वो कहता मैं क्या करूं, इनको पालना है, पढ़ाना है, विदेश भेजना है, क्या करूं, मुझे लेना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर हमें मिले थे, काफी सीनियर थे, जब आ जाते हैं ना नजदीक तो कोई कोई अपने दिल की बात सुना देता है, तो कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा 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 काफी बार गलत किया है। तो क्यों किया आपने, तो कहा बस यही लक्ष्य था कि बच्चे हैं विदेश पढ़ लें, अच्छे से सेटल हो जाएं, और क्या लक्ष्य होता है, हर माता पिता का वही होता है। तो कहां है वो, कहते दोनों बहुत अच्छे से सेटल है, उनकी एक बेटी और बेटा था, बहुत अच्छे से पढ़ लिख गए हैं, बहुत अच्छे से सेटल है, ऐसे फिर क्या प्रॉब्लम है, आपने तो गलत किया और उसके बाद भी जो आपकी आश थी वो तो पूरी हो गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कहा नहीं मुझे रात को नींद नहीं आती। ऐसे क्यों, का अंदर में बहुत डर लगता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, और इतने जीवन भर के जो मेहनत है, अवार्ड्स हैं, ये हैं, बस अंदर में डर ही लगता रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अब मुझे उस दिन उस भाई को देख करके समझ में आया कि शायद मरने तक भी उसको किसी को पता ही ना चले, पर वो तो भोग रहा था, उसको ना नींद थी, ना खुशी थी, ना सुख था, ना चैन था, ना आराम था, शायद जीवन के अंत तक किसी को पता ना चले, और लोग यही सोचते रहे कि ये बहुत अच्छा था, बहुत ऑनेस्ट था, सबका भला किया, पता ही ना चले। पर आप देखो जिसने गलत किया वो तो क्या कर रहा था, वो तो अंदर से सफोकेट हो रहा था, सप्रेस हो रहा था, फियर को एक्सपीरियंस कर रहा था। यही तो भोगना है, भोगना कोई ऐसे बाहर थोड़ी ना होती है। भोगना का मतलब होता है अगर आप खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, आपके जीवन में हल्कापन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को भोग रहे हैं। क्योंकि देखो धन क्यों जरूरी है, वो फर्स्ट एनर्जी है जो हमारे घर में आती है। जैसा धन होगा वैसा अन्न होगा ना, आप उस धन से घर में अन्न ही तो खरीदते हैं। और फिर अन्न के लिए क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। कभी आपने सुना है जैसा अन्न वैसा तन, होना तो क्या चाहिए था, जैसा अन्न वैसा तन, क्योंकि अन्न किसको जाकर के लगना है, तन को, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा अन्न वैसा मन, तो किस तरह से कमाया, फिर वो अन्न बनाने वाला अगर गलत तरीके से कमाया तो खाने वाले के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर वो भी कभी कभी गलत दिशा में जाना शुरू कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो उस गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं। इसलिए कहते थे भले नमक से रोटी खानी पड़े पर कभी भी जीवन में गलत नहीं करना। और ये कहते थे कि जितना है ना, क्योंकि आजकल ये गलत भी तो बड़ा कॉमन दिखाई देता है ओपनली, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होंगे, सर्जन भी होंगे, नहीं कोई भी फील करता कि ये गलत है, खुल करके बोलते हैं, ओपन हो गया। आप सोच करके देखो, सामने कोई आया है, बीमार है, मरने पर है, किसी की बाईपास सर्जरी है। पिछले दिनों मैं मुंबई में किसी को मिलने गई, उसके बाईपास सर्जरी हुई थी, और हम तो मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा फलाने फलाने डॉक्टर ने किया। हॉस्पिटल में जाते आजकल तो ऐसे होता ना, पहले आपको बताते हैं ये इतने का पैकेज है, बताएंगे नहीं, ये इतने का पैकेज है, ये एस्टिमेट है, ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर उस डॉक्टर ने बहुत खुले से कह दिया, इसके ऊपर इतना अमाउंट जो है वो मेरी टीम का है, जो अनएथिकल था। पर उन्होंने काफी ओपन बोलते हैं, जब इतना ओपन हो जाए तो आप देखो फिर किसी को किस प्रकार की शर्म ही कहे रहेंगी। अब तो कोई छिपाने की बात ही नहीं है क्योंकि सब कर रहे हैं। तो जब कोई चीज मेजॉरिटी करने लग जाती है ना, तो लगता है शायद वो राइट है, एक्सेप्टेड है। और डॉक्टर जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, किसके लिए वहां पर बैठा है? समाज की सेवा के लिए। उसके सामने कोई आया है जान से लड़ रहा है। लोग कभी कभी अपने घर वाले को बचाने के लिए अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना घर तक बेच देते हैं, लोन पर लेते हैं कि हमारा ये बच जाए। ऐसे को एक्सप्लॉइट करना, आप सोच करके देखो क्या हिसाब किताब बनता होगा। उसको धन संपत्ति सब आ जाएंगे, बाहर से वो सफल दिखाई देगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, गाड़ी भी होगी, बंगलो भी होगा। एक तो हमारे समय ऐसा आ गया है कि सफलता उसको समझते हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, लेकिन सफलता सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है, धन भी हो, फर्स्ट चीज धन हो, सेकंड चीज रिश्ते मधुर हो, थर्ड बॉडी हेल्दी हो, और फोर्थ मन से संतोष हो। चारों चीजें हैं तो कहेंगे ये सफल है। धन भी है, धन है इधर डिवोर्स हो रहा है, धन है इधर घर में झगड़े हो रहे हैं, धन है लेकिन बच्चा पिता से बात नहीं करता, तो फिर कैसे हो सकता है? रिश्तों का भी तो सुख होता है ना, रिश्ते ठीक नहीं हो तो मन को कितना दुख होता है। धन है लेकिन तन डॉक्टर है, लेकिन हो सकता है खुद को ही कितनी बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां हैं और मन का संतोष नहीं है। भाव ये कि जब तक चारों चीजें नहीं है तब तक आप उसको सफल नहीं कह सकते। पर सफलता आज के समय पर कैसे कैलकुलेट होती है? बाहर का, बाहर बाहर अगर आपके पास सब प्रकार के सुख साधन है तो देखने में लगेगा कि ये कैसा है, सफल है। एक बारी सुख साधन न भी हो, मन की शांति हो, मन का संतोष हो, तो भी उसको सफल कहेंगे और धीरे धीरे वो सफल हो भी जाते हैं। हम रोज तो सुनते हैं कोई रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई मजदूर का बच्चा है उसने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। सुनते हैं कि नहीं सुनते? होता है ना, नहीं था उनके पास धन, नहीं थी उनके पास उतनी कैपेसिटी, पर उनके पास पुण्य कर्म थे। धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन पुण्य कर्म थे और वो पुण्य कर्म का फल उनको मिल गया। और इसलिए आप सोचो कोई ऐसा अपना लेकर के आया हो परिवार का सदस्य मना, और उसको हम एक्सप्लॉइट करें, बहुत डीप कर्मा बन जाता है। और ही ऐसे जैसे डॉक्टर लॉयर को तो क्या सिखाया जाता था, इंटेंट में भी धन नहीं होना चाहिए, इंटेंशन में भी नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, गरीब है तो फ्री में भी सेवा कर दो, क्योंकि आप किसके लिए बैठे हुए हैं? सेवा के लिए। आप पता है वो लॉयर ऐसा पहनते हैं ब्लैक कलर का कोट, देखा आपने, उसके पीछे बड़ा सा पॉकेट होता है, वो पॉकेट किस लिए होता है, किस लिए हो? हाँ, पहले ऐसा होता था कि कोई लॉयर होता था ना वकील, बहुत पहले, तो वो सेवा करता था और कहता था मुझे देखना भी नहीं है आप क्या दे रहे हो, जो पीछे डाल जाएंगे ठीक है, देखना भी नहीं है, जो जो भगवान की मर्जी है। और आज आप बताओ, आज वहीं पर अगर कोई फंस गया उस चक्कर में तो क्या कहते हैं, फिर तो कई लोग तो पूरा कंगाल भी हो जाते हैं। तो जो प्रोफेशन थे ही सेवा के लिए, उनको तो कोई अलग से दान करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी गरीब की सेवा कर दी, किसी का भला कर दिया, दान हो गया। नहीं तो धन में भी सिखाते थे कि, पता नहीं आजकल सिखाते हैं कि नहीं, लेकिन पहले होता था, समझो आपका एक्स अमाउंट धन का है, कमाया सही तरीके से, गलत तरीके से कमाए हुए धन का दान का फल नहीं मिलता है, नहीं मिलता। आपने सोचा मैंने बहुत कमा लिया गलत तरीके से लेकिन मैंने दान कर दिया, यहां तक कि नुकसान भी हो सकता है। आपने दान किया, एक बार आप देखें, आपने दान किया, आपने किसी मंदिर में दान किया कि सब कोई भंडारा आपने कर दिया, और वहां पर किसी सन्यासी, किसी भक्त ने वो भोजन खाया जो गलत तरीके से बना हुआ था, और उसकी साधना पर उसका असर पड़ा, क्योंकि वो तो किसका भक्त है, भगवान का। उसने अन्न तो वो भी गृहस्थी के हाथ का ही खाते हैं, गलत तरीके से कमाया, हमने उससे दान किया, उसने खाया और उसका मन परमात्मा से हट करके कहीं पर भी लगा, तो आप सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। तो गलत तरीके से कमाए हुए का आपने दान किया वो भी सफल नहीं होता है, तो भले सही में से हमने 1 रुपये भी डाला वो भी सफल है, क्योंकि हमेशा कहते हैं भगवान क्या देखता है, किसका भाड़ा देता है, वो ये नहीं देखता आप क्या कर रहे हो, वो भगवान भावना का भाड़ा देता है। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल का यादगार है ना, थे ही क्या उसके पास 2 मुट्ठी चावल, लेकिन उसको भी समर्पण किया तो रिटर्न में क्या मिल गया, क्या मिला रिटर्न में, महल। तो हम क्या करते हैं नहीं, कैसे करते हैं, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। तो ऐसा होता था कि जितना अमाउंट है उसमें से थोड़ा खर्च, थोड़ा सेविंग्स और थोड़ा दान, ये तरीका होता था। वो हर एक अपना अपना जिसकी जैसी क्षमता हो, लेकिन 3 हिस्से में बंटता था, थोड़ा जो आपका खर्च है, थोड़ा जो आपकी सेविंग्स है और तीसरा जो दान है। क्योंकि जो आपने दान किया, चाहे वो धन है, तन है, मन है, अनुभव है, शक्ति है, दे दिया, वो क्या बन गया, वो क्या बन गया बताओ। जब तक मेरे पास धन था वो धन था, ठीक है, अब मैंने उसको क्या कर दिया, दान कर दिया, अब वो मेरे पास नहीं रहा ना, लेकिन वो जो मैंने दान किया वो कैसा कर्म है, पुण्य कर्म। तो अभी क्या बन गया, वो पुण्य, साथ क्या जाएगा, धन के पुण्य। इसलिए दान का महत्व था, इसलिए दान का महत्व था कि आपके पास जो कुछ है वो सब छूट जाएगा, पर जो आपने दान कर दिया वो पुण्य कर्म बन जाता है, और आत्मा सिर्फ साथ क्या लेकर के जा सकती है, सिर्फ पुण्य कर्म उसके साथ जाते हैं। और यहां तक भी सिखाया जाता था कि दान भी कैसा करना होता है, कहते एक परी 2 बहनें थी, दोनों प्रेग्नेंट थी, दोनों को हॉस्पिटल में थी, दोनों को बच्चा हुआ, एक का हुआ तुरंत मर गया, दूसरी को ट्विंस हुए, उसने अपना एक उठा करके उसको दे दिया, कहा इसको दान कहते हैं। जब आप थोड़ा त्याग करते हैं, सहन करते हैं, डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन किसी का भला होता है, उसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ दान। इट्स ऑल इन आवर कल्चर। पर हमने आज तक धन का सुना था, यहां हम आए, भगवान ने हमें कहा प्यार से बोलना भी दान है, किसी के लिए अच्छा सोचना भी दान है, कोई चिंता में है आप भगवान से याद कर रहे हैं, उसको वाइब्रेशन पहुंच रहा है, वो भी दान है। आप इस हॉल में बैठे हैं, जो एक बाजू वाला हॉल है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, एवरी थर्ड संडे, आज संडे है, एवरी थर्ड संडे ब्रह्मा कुमारीज के हर सेंटर पर, हमारे विश्व भर में सेंटर हैं, 10,000 से भी ज्यादा सेंटर्स होंगे 30-40 देशों के अंदर, आज के दिन थर्ड संडे पर 6:30 to 7:30 अपने टाइम जोन के हिसाब से, आज का जो दिन होता है वो फिक्स्ड होता है इंटरनेशनल योग, माना आज हर एक वहां बैठ करके विश्व को शांति का दान दे रहा है, निस्वार्थ भावना से वहां पर 1 घंटा सभी बैठ करके, चाहे कहीं पर भूकंप है, चाहे कहीं बारिश है, चाहे कोई दुखी है, चाहे कोई बीमार है, चाहे किसी के साथ है, तो अपना परिवार ना, सारा विश्व क्या है, अपना परिवार है, तो परमात्मा को याद करके उससे शक्ति लेकर के वो दान पहुंचता होगा कि नहीं, वाइब्रेशन पहुंचता है। आप घर में जाते हैं, कभी कभी घर के बाहर ही होते हैं, पर ऐसा वाइब्रेशन आ जाता है कि जैसे आज कुछ ठीक नहीं है, वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं होता, अंदर बाद में जाते हैं पर कहते बाहर ही मुझे समझ में आ गया था शायद आज कुछ ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में जाते हैं, भय का वायुमंडल, आश्रम सेंटर पर आते हैं, शांति का वायुमंडल, होता है कि नहीं होता। जिस प्रकार का चिंतन होता है उससे वाइब्रेशन फैलता है। जितनी शक्तिशाली आत्मा होती है उसका वाइब्रेशन उतनी दूर तक जाता है। तो हमारा फर्ज है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, विश्व का कल्याण करना, उसको भी सहयोग देना, उसको भी मदद देना हमारा फर्ज है। और इसलिए हम लोग फिजिकली भी करेंगे, धन से भी करेंगे, बोल करके भी करेंगे। जैसे ये अभी क्या है, ये वाचा सेवा है, लेकिन एक और सेवा है मनसा सेवा, कि मन से अच्छा सोच करके शक्तियों का दान देना कि विश्व जो परिवार है उसको भी शक्ति मिले, जो भी उसके सामने विघ्न है उसको सहन करने की और उसको पार करने की। यहाँ तक परमात्मा हमको सिखाता है कि बच्चे दान आपने किया वो पुण्य बन गया और पुण्य ही आपके साथ चलना है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे क्योंकि कर्म करना भी तो आना चाहिए ना। हम कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म में हमारे साथ छोटा 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 छोटा, अब ये वाला जो धन का है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से किस में जाएगा, आप बताओ। थोड़ा भी कहीं गड़बड़ करी, इच्छाएं बहुत थी उसके कारण अनएथिकल हो गए, अंदर में खुशी नहीं थी, खुशी के लिए हमने कुछ गड़बड़ करी, ये किस में जाएगा, लोभ में जाएगा कि नहीं। तो बाहर का करप्शन अंदर का लोभ है, अंदर का लोभ खत्म नहीं हुआ तो बाहर का करप्शन कभी भी नहीं खत्म हो सकता। कैसे खत्म होगा, कितनी भी आप पॉलिसीज बना लो, कितने भी लॉज बना लो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। अब संस्कार ही नहीं परिवर्तन हुआ तो संसार कैसे परिवर्तन होगा। तो परमात्मा कहता है आप विश्व स्व को परिवर्तन करो, विश्व अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग अपने आप सत्युग बन जाएगा। सत्युग बनाने की जरूरत नहीं है, सत्युगी बनने की जरूरत है। प्यार है सत्युगी बनने के लिए, सत्युग आ जाए वो तो दिल होती है, पर सत्युगी बनना पड़ेगा ना, तो सत्युगी दुनिया आएंगी। दूसरा जो आता है जन्म, अपने जब हमारे साथ गलत करते हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं अपने जब हमारे साथ करते हैं बड़ा दुख होता है, बाहर वाला कोई करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अपना हमारे साथ अपने गलत नहीं करते हैं, जिनके साथ हिसाब किताब होता है वो अपने बन करके आ जाते हैं। आपने आज किसी के साथ गलत किया, आप मौज में रहे, आपने शरीर छोड़ दिया, कभी कभी तो बहुत ही नजदीक के संबंधी आ जाते हैं। हम सारा जीवन मन्नत मांग रहे होते हैं भगवान से, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, और फिर कभी कभी हो जाता है, कहते मेरे को ना सबसे ज्यादा दुखी इससे मिला, होता है कभी कभी कि नहीं, क्यों, क्योंकि क्या था उसके साथ, काउंट, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है। अब जब केवल इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, कोई एक आत्मा है अपमान करती रहती है, कोई एक आत्मा है निंदा करती रहती है, कोई है जो दुख देता रहता है, कोई एक आध तो होता है ना फैमिली में, किस किस को कोई एक आध है जो ऐसा करता ही रहता है परेशान, वो हाथ खड़ा करना, बस सोच के बताना जरा, है कोई एक वापस हाथ खड़ा करना। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है जब वो गलत करें तो क्या करना है, ईट का जवाब बोलो बोलो, ईट का जवाब पत्थर, दुनिया पत्थर ही सिखाएगी। और फिर हम कहेंगे जो देंगे वो लौट कर आएगा, अरे जो दिया था वही लौट कर आ रहा है, आज फिर अगर वो देंगे फिर लौट करके आएगा। इसलिए उस समय पर क्या करना होता है, जो परमात्मा सिखाता है वही आपको सिखा सकते हैं कि बच्चे वहां से अगर कोई ईट भी है ना, उसका जवाब पत्थर से नहीं दो, किससे दो, फूल से दो, मन उसने गलत बोला, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने प्यार से बोला, खत्म। उसने अपना कर्म किया, आपने अपना कर्म किया, उसके कर्म से उसका भाग्य, आपके कर्म से आपका भाग्य, ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। उसने गलत किया, आपने सहन किया, सहन करना माना आप डिस्टर्ब नहीं हुए, जो हमने कल सीखा था ना, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, किया कुछ होगा पुराना हिसाब किताब, उसने किया लेकिन हमने उसके लिए भी अच्छा सोचा, ये हिसाब किताब पूरा हो गया मुझे पूरा करना है, मुझे अब इसको नया नहीं बनाना है, मेरे को इसको अभी क्या करना है, सेटल। यहाँ हलचल नहीं और उसके प्रति भी अच्छा सोचा, इसका भी अच्छा हो, इसका भी कल्याण हो, इसको भी दिल से दुआएं, इसका भी भला हो, फटाफट सेटल हो जाएगा। वहां से ब्लैक बॉल आई, आपने कौन सी भेजी? व्हाइट। आप व्हाइट भेजेंगे तो वहां से कौन सी आएगी? वहां से ब्लैक आई, आपने व्हाइट भेजे तो फिर वहां से कौन सी आएगी? नहीं आएगी, व्हाइट नहीं आएगी। कौन सी आएगी? बहुत जमा करके रखी हुई है, थोड़ा समय लगेगा। ऐसे नहीं सोचा मैंने आज सोचा मैं व्हाइट भेजूंगा आप तुरंत वहां से व्हाइट आने लगेगी, नहीं, थोड़े समय तक तो कौन सी आएगी? तो सारी जमा की हुई है, फिर खाली हो जाएंगी, फिर आपकी व्हाइट वहां जमा है, फिर वहां से व्हाइट आनी शुरू हो जाएंगी। 100% निश्चित रूप से अकाउंट सेटल हो जाएगा। आप कहेंगे अरे इससे सबसे ज्यादा दुख मिलता था, आज इससे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को भगवान पे निश्चय होता है और उसकी बातों पर निश्चय होता है ना, वो एक लाइन जरूर बोलते हैं। मैंने नजदीक से बहुत लोगों को देखा है 20-25-30 ईयर्स के जर्नी में, वो एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो दिन भी था आज का दिन भी है। वो ये जरूर कहते हैं, एक वो दिन था जब इतना दुख था, तकलीफ था, आज ये दिन है। हमारे पास एक माता आती है सेंटर पर, वो बहन जब ज्ञान में आई तो उसके पति को ब्रेन ट्यूमर था, नीचे से सारा पैरालिसिस था, बेड पर था, बहुत उसकी सेवा करनी होती थी, अब गाली भी बहुत देता था। कहती रात को शुरू करता था 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक, कुछ ना कुछ गलत गलत, और कहा किसी दिन नहीं बोल रहा है तो मेरे को घबराहट होती थी कि आज गाना क्यों नहीं बज रहा है, ये ठीक तो है। और फिर उसके बाद उसकी दो डॉटर्स थी, थोड़े समय के बाद एक को डायग्नोस हुआ ब्रेन ट्यूमर, फिर दूसरे को भी डायग्नोस हो गया, क्योंकि ये जेनेटिकली कई बार पास हो जाता है। वो कई बार सुनाती है कि भगवान मिला, आती थी मुरली सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, बड़ी दिल होती थी उसकी कई बार दान करने की। कहा मेरे पास 200 रुपये भी नहीं होता था दान करने के लिए, मैं कई बार चीनी रख करके चली जाती थी। आज उसके पति ने पहले ब्रेन ट्यूमर से शरीर छोड़ा, फिर एक छोटी बेटी ने भी छोड़ दिया काफी समय के बाद। दोनों बच्चे ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, एक ने तो छोड़ दिया शरीर, दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आज उसकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है। और वो सुना रही थी दीदी एक वो दिन भी था आज ये दिन भी है, पर बिना उसके, बिना भगवान के साथ के ये दिन कभी नहीं आता, और बहुत कठिन पेपर था लेकिन कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तो धन का पेपर, जन का तीसरा कौन सा? तन। वो भी बहुत मुश्किल होता है जब कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, पर उस समय अपने को याद दिलाना है मैं बीमार नहीं हूं। कौन बीमार है? मेरा शरीर। इसलिए कहते हैं पेन इज कंपल्सरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन है, शरीर को है, लेकिन दर्द भोगना कितना है? भोगेंगे तब जब कहेंगे मैं बीमार हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। और या बहुत अच्छे से उसको याद करें, शरीर का पेपर याद बहुत बढ़ाता है। जब भी कोई शरीर का विघ्न आता है ना, वो बहुत याद बढ़ाता है। इसलिए हर पेपर का शुक्रिया। अभी तो जो पेपर आ जाए उसका शुक्रिया, क्योंकि वो पेपर जो है, आज की हमारी जो मुरली थी उसमें भी था, उसको विघ्न नहीं समझो, उसको पेपर समझो, क्योंकि वो पेपर आपको उसके और समीप लेकर के आएगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। इसलिए कभी कभी पेन अवेकनिंग का काम कर जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और सारी दुनिया का सहारा लेकर के तो देख लिया, अभी किसका सहारा लेना है? किसका सहारा लेना है? जो सर्वशक्तिवान है। तो शरीर के पेपर में भी आप सेवा कर सकते हैं। हमारी गुजार दादी जी थी, उनको कैंसर था, और डॉक्टर अशोक मेहता जी हैं जो अभी ज्ञान में चलते हैं, सुनाते हैं, बड़े सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट थे मुंबई के। कहा जब उस समय तो नहीं जानते थे ये कौन है, कहा रूम में गया, इतना हल्कापन लगता था और रिपोर्ट देख करके लगता था कि इनको बहुत दर्द होना चाहिए, और रिपोर्ट के अनुसार लगता था दर्द होना चाहिए, पर वो बिल्कुल स्टेबल होते थे। और ही हम डॉक्टर पेशेंट को पूछते हैं आप कैसे हो, दादी जी उनको पूछते थे डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं, और कभी जी बच्चा बच्चा कहके भी बुलाती थी। तो कहा इतने समय के बाद किसी ने अपनेपन से बुलाया तो उनको बड़ा लगा कि कोई तो बात है। और फिर कुछ उन्होंने उनके ऊपर टेस्ट किए तो पता चला, क्योंकि उनका मन बहुत शक्तिशाली है और भगवान की याद में रहते हैं, तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन अपने आप सिक्रीट हो रहे हैं जो पेन को, मतलब उनको पेन महसूस नहीं हो रहा। जो डॉक्टर बाहर से पेन किलर देते हैं ना, वो हार्मोन ही पेन किलर का काम कर रहा है कि उनको पेन की महसूस नहीं हो रही। इसलिए आप देखिए, कहीं आपको संत आत्माएं, महान आत्माएं भी दिखेंगी, कहीं भाई ये संकल्प चलता है ना कि ये तो इतने योगी हैं, ये तो इतने हैं, इनको क्यों आता है? हिसाब किताब है तो आएगा, लेकिन उनको भोगना नहीं होते, उनको उस बीमारी के अंदर भी दुख नहीं होता, उस बीमारी के अंदर भी दर्द नहीं होता, वो सहज बीमारी कट जाती है। और आखिरी जो बहुत मुश्किल पेपर है, जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, वो है मानसिक बीमारियां। वो तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो एक ही कहते हैं खुशी नहीं है। वो मानसिक बीमारी का कारण भी है पापों का बोझ सर के ऊपर बहुत है। कोई दवाई मन तक जा नहीं सकती है, क्योंकि मन कोई ऑर्गन नहीं है। जब मन उदास होता है तो उससे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और उस इम्पैक्ट को बचाने के लिए वो सब दवाइयां हैं जो बहुत जरूरी हैं, कम से कम सपोर्ट का काम तो करती हैं, पर कोई भी दवाई मन को ठीक नहीं कर सकती, चिंतन की धारा को नहीं बदल सकती है। जब तक आप चिंतन की धारा को नहीं बदलेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तब तक वो हिसाब किताब चुकतो नहीं होगा, और मन को सच्ची खुशी, आंतरिक खुशी आएंगे नहीं। लेकिन अभी कर्मों की गुहे गति हम सिर्फ इसीलिए समझते हैं कि जो हो गया सो हो गया, हम दिल शिकस्त नहीं होते, हम गिल्ट में नहीं जाते, बीती सो बिंदी। एक अब जो लौट करके आएगा उसमें थोड़ा धीरज चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, उसकी याद चाहिए, वो कट जाता है, बहुत आनंद से कट जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती और हर एक के सामने आता है। आप ऐसा नहीं समझ लेना शायद जो सेंटर पर रहते हैं, आश्रम पर रहते हैं, उनको नहीं आता, सबके सामने आता है, क्योंकि अपनी बोया हुआ बीज है ना, तो फसल किसको काटनी पड़ेगी? काटनी तो पड़ेगी। तो एक है कि उसकी याद से बड़ा सहज वो सेटल हो जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। दूसरा वो कहता है ये भगवानुवाच, मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। जितना मुझे याद करोगे तो जो किया है वो विनाश होता जाएगा। और तीसरा, अब जो कर्म करना है वो कैसा? राइट। उसके लिए ज्ञान और योग से अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। नहीं खत्म होगा तो फिर विकर्म होगा, फिर सेटल करना पड़ेगा। और विकार किसी बाहर की पढ़ाई से नहीं दूर हो सकते। एक मॉडर्न पढ़ाई है, आधुनिक पढ़ाई है, उससे आप धन संपत्ति कमा सकते हैं, और एक आध्यात्मिक पढ़ाई है, भगवान को याद करने की पढ़ाई है, ज्ञान योग की पढ़ाई है, उसी से ही ये जो अंदर की कमी कमजोरियां हैं, जो अंदर के विकार हैं, वो परिवर्तन होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं और हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो तैयार हैं एक यात्रा के लिए, तैयार हैं इस यात्रा के लिए कि उसके ज्ञान से, उसकी याद से पुराने को खत्म करना है, आगे जो बीज बोना है वो अच्छा बोना है। तो भगवान आपका चुप तो नहीं कर सकता, लेकिन मदद कर सकता है। जैसे बच्चे का होमवर्क हो तो आप कर देंगे उसका होमवर्क, करेंगे उसका होमवर्क? नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपने कर दिया तो वो कमजोर बन जाएगा, वो भी नहीं कर सकता है। वो करेगा तो हम पाप करते रहेंगे, वो सेटल करता रहेगा तो हम कमजोर बन जाएंगे, तो वो नहीं कर सकता है। इसलिए कई बार हमें लगता है हम इतना याद करते हैं, वो क्यों नहीं करता? वो सेटल नहीं कर सकता, लेकिन वो सेटल करने की क्या दे सकता है? मदद दे सकता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, और फिर वो चीज हमें महसूस ही नहीं हो सकती, तो उसकी याद से वो चीज बहुत सहज हो जाती है। ठीक है, अभी 2 मिनट उसको याद करें। उसके बाद एक बहुत सुंदर, जो आपने यहाँ पर 3 दिन बिताए उसकी झलकियों की एक वीडियो बनाई है, हमारे जो भाई हैं वीडियो डिपार्टमेंट के, आप जब सब एंजॉय कर रहे थे तो वो कुछ कुछ कैप्चर कर रहे थे, और आपके लिए एक सुंदर मेमोरी बन सके, आप परिवार को दिखा सके, आप उसको देख करके इन स्मृतियों को ताजा कर सके, उसकी एक सुंदर झलक उन्होंने बनाई है, वो भी देखेंगे, फिर वो आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन उनका एक ये सुंदर एफर्ट रहा कि एक यादगार, एक मेमोरी आप सब लेकर के जाएं। तो पहले हम योग करेंगे, उसके बाद हम वो देखेंगे। चलिए, कंफर्टेबल होकर बैठे। कुछ पलों के लिए मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। और अपने मन को समझाएं कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है वो मेरे ही कर्मों का फल है। भगवान हमारे हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करता, वो तो हमें सही गलत की पहचान देता है। लेकिन जब हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते, विकारों में फंस जाते, उन विकारों के कारण हमारे से विकर्म हो गए, अपने से पूछे क्या हमने कभी क्रोध नहीं किया, झूठ नहीं बोला, लोभवश कुछ गलत किया, चिंता, दुख, नफरत, ईर्ष्या, जाने अनजाने में हमारे से भी कुछ बीज गलत बोए गए, पर हमें समझ नहीं थी। हमने दुनिया को देखा और जिस दिशा में वो चलती गई हम भी चलते गए। लेकिन आज बुद्धिवानों का बुद्धिवान हमें सत बुद्धि दे रहा है, सही गलत की पहचान दे रहा है, उस पर चलने की शक्ति दे रहा है। इसलिए आज अपने से वायदा करें कि अब हम सत के मार्ग पर चलेंगे, जो हमने पास्ट में किया था वो हमारा प्रेजेंट है, और आज जो करेंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा, बोल होगा, कर्म होगा, उससे हमारा कल बनेगा। भविष्य वर्तमान की परछाई है, इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाए। उस परमात्मा से जुड़े जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, अगर उसको अपना साथी बनाएंगे तो जीवन में हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। सत्य का संग करें, और अगर जीवन में कोई विघ्न है तो आज उसका भी शुक्रिया करें। आज वो विघ्न हमें भगवान से जोड़ाने के निमित्त बना, सहन शक्ति को बढ़ाने के निमित्त बना, हमारे भाग्य को बदलने के निमित्त बना। इसलिए उस विघ्न का भी शुक्रिया, उस परमात्मा का भी शुक्रिया, और आज से एक नई शुरुआत करें। ओम शांति।
ओम शांति। धन्यवाद को शब्दों में रूपायित नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन दुआओं से और तालियों से जरूर हम श्रेया बहन का शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम मिलेंगे श्रेया बहन से। हमारा बहुत ही भाग्य है कि कल तीसरी बार फिर हम सुनेंगे श्रेया बहन को। अभी सभी बैठे रहेंगे, एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाया जाएगा, जो पहले दिन से सेशंस चल रहे, प्रोग्राम्स हो रहे, उसकी एक स्वीट मेमोरी बनाई गई है। तो हम 2 मिनट वीडियो देखेंगे, सभी फिर डिनर के लिए प्रस्थान करेंगे, रेस्ट करेंगे, और मॉर्निंग 4 o'clock मेडिटेशन में फिर से रिचार्ज होने के लिए इसी हॉल में आ
जाएंगे। करते हैं और जो बड़े हमें सिखाते रहे उनका दिल से आभार है।
हम ना याद रखें पर अगर एक ओम शांति भी जरूरी नहीं है कि मुंह से बोलने की बात है, परंतु जब भी मन में निर्णय करना है, कोई दुविधा है, कोई उलझन है, कोई निराशा है, कोई डर है, मन में तो अनेक प्रकार की ऐसी संकल्प कहें या स्टेट ऑफ माइंड स्थिति कहें आती रहती है, तो आप एकदम सहज तरीके से खुद के अंदर ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ऐसा एक बहुत सिंपल अभ्यास करें।